ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम में इस्कान श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातः काल के श्रीमद् भागवत के प्रवचन में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध उसके भी 31वें अध्याय के ऊपर सत्संग चल रहा है और इस अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल का उपदेश। ये कथा हो रही है सिद्ध आश्रम में, वहां कर्दम मुनि तपस्या करते थे। स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह उनके साथ आकर किया और तपस्या से परिपक्व होकर गृहस्थ का पालन करते हुए नौ कन्याओं को जन्म दिया मां देवहूति ने, और फिर एक पुत्र कपिल देव का प्रकट हुआ। कपिल देव के जन्म लेते ही कर्दम मुनि तो तपस्या करने चले गए। समय आने के ऊपर मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को साक्षात भगवान जानते हुए प्रार्थना की और संसार के बंधन से मुक्त होने का मार्ग पूछा। तो इन प्रश्नों के अंतर्गत जो अभी प्रश्नों की श्रेणी चल रही है, शुद्ध भक्ति योग क्या है, वो इससे पहले चर्चा हुई। एक प्रश्न करुणा के वश मां ने पूछा था देवहूति ने कि संसार में जीव बंधन में कैसे पड़ते हैं, बार बार उनको जन्म मृत्यु में कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। ये आप इसलिए समझाइए कि लोगों को इसका अनुभव हो जाएगा तो लोग इस मार्ग से अपने आप को बचा लेंगे और वापस आपकी भक्ति करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में एक बीच में प्रश्न था, पहले चला गया, काल का प्रभाव क्या है, काल कैसे हर चीज के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। तो भक्ति योग और काल दो प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस अध्याय में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जीव इस संसार में क्यों बंध जाता है और बार बार उसको जन्म क्यों लेना पड़ता है। तो ये कपिल देव अपनी मां देवहूति को सुना रहे हैं। और इस अध्याय के पहले 11 श्लोकों में गर्भ गीता, जैसे जिसको कहा जाए कि बच्चे का गर्भधान गर्भधारा में बच्चा प्रवेश कैसा करता है, उसका वर्णन है। एक दिन में कैसे, दो दिन में कैसे, दो महीने में कैसे, पूरा शरीर कैसे बनता है, उसका वर्णन है। जब बच्चा सचेत, उसका चेतना जागृत होती है तो केवल मानव शरीर जब उसको प्राप्त होता है तब उसकी चेतना में भगवान की प्रार्थना करने का प्रसंग यहां शुरू होता है 12वें श्लोक से, और 22वें श्लोक तक 23वें श्लोक तक जीव आत्मा केवल मानव शरीर में माता के गर्भ में भगवान को प्रार्थना कर रहे, उस प्रार्थना को हम सुनते आ रहे हैं दो तीन दिन से, आज उसी प्रार्थना को। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये प्रार्थना है गर्भस्थ शिशु की, हम भी एक दिन गर्भ में रहे हैं तो उस वक्त हमने ये प्रार्थना की थी, अब हम उसको भूल गए हैं। तो ये गर्भ इस केवल मानव में, बाकी सब शरीर जितने 84 लाख जोनियों हैं उनमें जीव को बेचारे को सिर्फ क्या करना है कैसे करना है उतना ही मालूम होता है, वो भगवान की प्रार्थना करके अपने को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। तो ये बातें इस अध्याय में विशेष रूप से बताई जाएंगी। तो गर्भ स्थित शिशु क्या कहा जाए उसको, जो अभी जन्म ही नहीं लिया है 10 महीने का, ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र बाद में कहते हैं 10 महीने तक, तो वो जीव आत्मा भगवान जो परमात्मा के रूप में उसके साथ में बैठा हुआ है उसको देखता है और उसको प्रार्थना करता है। और ऐसे भी लिखा है कि 100 पूर्व जन्म उसको ज्ञात होते हैं, याद हो जाते हैं और उस स्थिति में भगवान को प्रार्थना करता है। उस प्रार्थना का आज श्लोक हम पढ़ रहे हैं। प्रार्थना पूरी करेगा, 22 श्लोक तक प्रार्थना चलेगी और फिर भगवान प्रार्थना सुन के उसको गर्भ से बाहर निकालेंगे और बाहर आते ही सब कुछ भूल जाएगा। बाहर आते ही सब कुछ भूल जाएगा, फिर वही चक्कर चालू हो जाएगा। तो इसलिए ये सुनना जरूरी है कि हम बाहर हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के इस भजन के अनुसार जो प्राय हम गाते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले, उसमें ये एक पंक्ति है कि गर्भ में जो भगवान से आपने वायदा किया था उसको क्यों भूल गए। किसी को याद है ये भजन के तुक? आपने मां के गर्भ में भगवान से जो वचन किया था उसको क्यों भूल गए और फिर कहा कि अब मैं आपके लिए हरे कृष्णा महामंत्र लाया हूं, आप उसको मांग लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं हरे कृष्णा मंत्र लाया हूं, आप इसको मांग लीजिए और आप अपने वायदे को निभाइए और अपनी यादगिरी को, अपनी स्मृति को वापस लाइए। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं हमारी प्रार्थना, किसकी? ह्यूमन सोल की। मानव आत्मा जब मानव शरीर में प्रवेश करती है तब उसकी प्रार्थना, भगवान जो परमात्मा के रूप में उसी के साथ में बैठा हुआ है, उसी गर्भ में बैठा हुआ है, उसको प्रार्थना कर रहा है। आश्चर्य तो ये है कि दोनों गर्भ में है लेकिन एक गर्भ के का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है और दूसरा गर्भ में दुख भोग रहा है, एक ही जगह दोनों है। स्थित एक ही जगह बैठे हुए हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसका वर्णन हुआ है। आपने कभी देखा है वो गाय का जो स्तन होता है ना, गाय का बछड़ा भी उधर ही दूध पीता है और उसको अच्छा लगता है और उधर एक इतना बड़ा जौ बैठा होता है जो खून पीता है। एक ही जगह पे दोनों बैठे हुए हैं लेकिन दोनों के काम में अंतर है। तो ऐसे भगवान वहां बैठे हैं, वो तो सच्चित आनंद अपने ही स्वभाव में बैठे हैं तो अमृत बरसा रहे हैं और वहीं बैठे हुए हम शरीर के अंदर दुख भोग रहे हैं। जगह एक ही है, ये और जगहों पे मिलेगा। एक ही जगह पे समुद्र का मंथन हुआ, देवता भी वहां, असुर भी वहां, लेकिन फल में अंतर, एक को अमृत मिला और एक के मुंह काले हुए केवल, वो तो उससे विष से काले हो गए थे ना सारे। तो चीज जगह एक है लेकिन जो फल है वो अंतर है। तो दो तो परमात्मा में आत्मा में क्या अंतर है ये समझने के लिए ये प्रसंग बहुत अच्छा है। तो आइए ये जीव की प्रार्थना को पढ़ते हैं, आप अपनी प्रार्थना इसको मानिए तब आपको इसमें आपका अनुभव बढ़ेगा। यतमाययो गुण कर्म निबंधने अस्मिन् सांसारिके पथि चिरं स्तत् अभिश्रमेण नष्टः स्मृतिः पुनरायं प्रवणीत लोकम् युक्तया कया महत् अनुग्रहणेन अन्तरेण हरे कृष्ण। सो यन का मतलब है उस भगवान के द्वारा, माया भगवान की माया कैसी है, माया और गुणा जिनके जो गुणों से युक्त है। माया भगवान कैसी है? त्रिगुणी माया, तो गुणों से युक्त माया, गुणों से जो माया उत्पन्न हुई है। निबंधनेन मैं बंध अस्मिन उसके द्वारा मैं बंध गया हूं। कौन कह रहा है? मानव जीव आत्मा मां के गर्भ में भगवान को प्रार्थना करते हुए कह रहा है, भगवान की त्रिगुणी माया से मैं बंध गया हूं। क्यों बंध गया हूं? बोला कर्मेण, मेरे अपने कर्मों के कारण। भगवान ने बांधा है? बोला नहीं, मेरे कर्मों से बंध गया हूं। कर्म ने बीच में है। अब पहली लाइन समझ में आ रही है सीधी अपने आप? भगवान की त्रिगुणी माया से मैं बंध गया हूं। क्यों? अपने कर्मों के कारण, मेरे ही कर्मों के कारण मैं माया के गुणों से बंध गया हूं। तो अब क्या होगा? बोला अब सांसारी के पथि, अब तो मैंने मार्ग, पथि का मतलब मार्ग, कौन सा मार्ग चुन लिया है? सांसारी के। सांसारी का मतलब जन्म मृत्यु, सांसारिक का मतलब जो आज है कल नहीं रहेगा, चलता रहे उसको सड़क, जिसको सड़क बोलते हैं, सड़क के ऊपर किसी को खड़ा होना नहीं होता, चलना होता है, तो इसमें चलना ही पड़ेगा। संसार का अर्थ ऐसे होता है जो चीज उसी स्थान पे वैसे दोबारा नहीं होगी, बदल जाएगी। तो संसारी के पथे मैं अपने कर्मों के कारण त्रिगुणी माया में बंध गया हूं भगवान, और मैं जन्म मृत्यु के रास्ते के ऊपर अब निकल चुका हूं। चरद अस्म क्या है, और क्या करना पड़ेगा मुझे अब? बहुत बड़ा अभिशर्मेण, अभी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। काहे के लिए? ये जो शरीर मैंने खरीद लिया है इसको पालने के लिए अब मैं सारी जिंदगी परेशान रहूंगा। ये बात समझ में आ रही है? अभिशर्मेण, शर्मेण का मतलब मेहनत करना, अभिशर्मेण का मतलब अभी कभी सदा के लिए इसी के पालन पोषण में अब मैं लगा रहूंगा। आई बात समझ में? आई? अब क्या है, उसके कारण क्या हो गया? इतना मैं शरीर को संभालने में लग जाऊंगा, क्योंकि इसके पालन पोषण में, फिर इसके बच्चे पोते पाते नाते, और उनको संभालते संभालते क्या होगा? नष्ट स्मृति, मेरी सारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, मेरी असली पहचान। क्या मेरी स्मृति क्या नष्ट हो जाएगी? मेरी स्मृति नष्ट हो जाएगी। क्या था पहले? पुनर प्रवणितेन लोकेन। अभी केवल इस मानव शरीर में मैं अनुभव कर सकता हूं कि मेरा असली कर्तव्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, अथवा मैं किसकी सेवा मुझे करनी है। ये तो केवल मानव शरीर में अब मुझे पता लग सकता है, नहीं तो मैं कई जन्मों में सिर्फ शरीर के ही सेवा में सब कुछ भूल चुका था। अब भगवान को प्रार्थना कर रहा है, तब आगे कह रहा है युक्तया कया। अब क्या युक्ति किसे, क्या युक्ति है, कैसे मैं इसको वापस याद करूं? तब कहता है आपके अनुग्रहण से, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा अगर होगी, आप कृपा करेंगे तो मैं वापस अपने स्वरूप को याद कर सकता हूं, नहीं तो इस संसार में, इस शरीर के चक्कर में चलता रहूंगा। समझ में आया श्लोक? ये श्लोक के शब्द अर्थ को सुन लीजिए। यह भगवान की माया, माया से उर्गुणा, महागुणों से निकलने वाला, महागुण से निकलने वाला कर्मा, कर्म निबंधन ना बंधों से अस्मिन, इस सांसारिक बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथि रास्ते पर चरण चलते हुए तात उसका अभिश्रमेण अत्याधिक कष्ट के साथ नष्ट भ्रष्ट स्मृति स्मरण शक्ति पुनः फिर अयम ये जीव प्रवणित अनुभव कर सकता है लोकम अपनी असली प्रकृति युक्तया कया जिस किसी साधन से महत अनुग्रहम, भगवान की कृपा अंतरेण बिना। तो आइए श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। जीव आगे प्रार्थना करता है, मानव शरीर में जीव मां के गर्भ में प्रार्थना कर रहा है। जीव आत्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र को बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। इसका मतलब जो भी दुनिया में हम कर रहे हैं, ये एक नए जन्म को लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जन्म लेंगे तो उसके साथ मरण मिला हुआ मिलेगा। वो फ्री डील है, वन के एक के ऊपर एक फ्री, जन्म लो मरण साथ में मुफ्त में है। वो तो फ्री डील है, वो लेनी ही पड़ेगी। तो उसी के साथ तो अब फिर तो इसका मतलब हम बेकार काम कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ, जो कुछ दुनिया कर रही है ये तो जन्म मरण के रास्ते की तैयारी कर रही है। बहुत समझदारी की बात है, सुनिए। ये बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। ये बद्ध जीवन, बद्ध जीवन का मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ जीव। ये बद्ध जीवन मतलब प्रकृति के आश्रित जीव क्यों ये परिश्रम कर रहा है, उसका एक ही कारण है। क्या कारण लिखा है? भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? कैसे हो सकता है? कोई भगवान की कृपा के बगैर कोई भी वापस अपने स्वरूप में भगवान की प्रेममयी सेवा में नहीं लग सकता। ये जीव कह रहा है, इसका अर्थ है कि आप कृपा कीजिए कि हम आपकी सेवा करें। चैतन्य महाप्रभु के उत्तर में जहां ये प्रसंग चलता है, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जीव कई जोनियों में कैसे भ्रमण करता है। असंख्य जीव हैं, असंख्य जीव हैं। कुछ चर है, कुछ अचर है, कुछ चल सकते हैं, कुछ चल नहीं सकते हैं। जो चल सकते हैं उसमें कुछ जल में है, कुछ धरती पे है, कुछ आकाश में, और जो धरती में है उसमें भी कुछ पक्षी, कुछ पशु है और कुछ मानव है। सबसे अल्प मानव है, सबसे कम संख्या मानव की है, और मानव में आधे तो पशु जैसे ही है, महाप्रभु कह रहे हैं। बाकी जो आधे हैं उसमें प्रायः बहुत सारे कर्म के चक्कर में लगे हुए ताकि दूसरा जन्म ले। कोटि कर्मी मध्य कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ, हजारों करोड़ों कर्मी जो कर्म कर रहे हैं उनमें से कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, ऐसे करोड़ों ज्ञानी उसमें से कोई एक मुक्त होता है। कोटि मुक्त मध्य रेयर अल्प कृष्ण भक्त, दुर्लभ कृष्ण भक्त। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो कोटि करोड़ जो मुक्त हो चुके हैं उनमें से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। तो पूछा जाए कृष्ण भक्त कैसे बनता है, तब महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा होती है तब गुरु का शरण मिलता है, तब भक्ति का बीज मिलता है, तब संसार का चक्कर समाप्त होता है। तो यहां वो बात की जा रही है कि भगवान की कृपा के बगैर ये होना संभव नहीं। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है सीधा, तो क्या ज्ञान से नहीं हो सकता है क्या? क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य शुरू ही ऐसे होता है कि ये सुनिए क्या कहते हैं। मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रायः जो लोग ये कहते हैं कि जीव अज्ञानता के कारण बंधन में आया है और ज्ञान प्राप्त करने से बंधन से मुक्त हो जाएगा, ये मत मायावादियों का है, अथवा जो ज्ञान के पथ के ऊपर चलते हैं उनका ये मत है अज्ञान के कारण बंधन है, ज्ञान होगा तो बंधन खुल जाएगा। अपने साधन से ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें अपने साधन से ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन प्रभुपाद जी इसके लिए लिखते हैं कि नहीं, यहां यह कहा जाएगा कि अपना कितना भी प्रयास करे ज्ञान का, लेकिन भगवान की कृपा के बगैर, अनुग्रह के बगैर यह होना संभव नहीं है। एक माता जी थी, बुढ़िया, बड़ी ज्ञानी थी। एक साधु आता था तो उसको बुलाती थी, बाबा हमारे घर से भिक्षा लिया करो। रोटी देती थी, दो तीन दिन देनी, एक दिन बोला बाबा कुछ ज्ञान दे दो, कल दूंगा। फिर आया, प्रसाद लिया, ज्ञान दे दो कल। एक दिन बोला कल तो जरूर देना बाबा, ज्ञान तो अब लेना ही है। तो बाबा जो पात्र ज्ञान लेता था, वो पात्र में रास्ते से आते हुए गौशाला से कुछ गोबर डाल दिया, कुछ घास डाल दिया, कुछ पत्ते डाल दिए। माँ ने भी बड़ा अच्छा सुंदर प्रसाद बनाया, खीर बनाई, हाँ पिस्ता काजू केसर डाल के, और बाबा प्रसाद खाओ। और तो बाबा ने बोला डालो बर्तन में। बोला इसमें कचरा पड़ा है, गोबर पड़ा है। बोला क्या करना है गोबर को, तुम डाल दो खीर। बोले नहीं नहीं, खीर बहुत अच्छी है, इसमें कैसे डालूंगा, इसमें तो गोबर पड़ा है, साफ करो फिर डालो। वो बाबा ने बोला ये मेरी माँ, तेरे माथे में इतना गोबर पड़ा है, ज्ञान कहां से डालूं। तू बोलती है ज्ञान डालो ज्ञान डालो, तेरी खीर तू मेरे बर्तन में नहीं डालती है और तेरे माथे में इतना कचरा भरा हुआ है, उसको साफ कौन करेगा, तब डालूंगा। तो ज्ञान में तो आपको साफ करना है, लेकिन भक्ति में जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा अपने आप को साफ नहीं करता है, माँ उसको साफ करती है, उसकी मां सफाई करती है, बच्चा अपने आप को साफ नहीं कर सकता है। तो भक्ति में भगवान स्वयं साफ करते हैं बच्चे को, धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बेस्ट के सारे भक्त के मैल को धोता है। सुहृद सताम धुनोति सुहृद सताम, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, एक ही काम करना है। यज्ञ करोगे तो फल मिलेगा, और मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन भागवत केवल सुनोगे, केवल सुनोगे तो भगवान हृदय में आकर सारी सफाई कर देंगे हृदय की, केवल सुनने से। ऐसा और कोई साधन नहीं है, कोई साधन और नहीं है, बाकी करने से फल मिलता है, यह केवल शुश्रुमाणाय, केवल सुनने से, केवल सुनने से। व्यासदेव को जब भागवत रचना करने के लिए नारद जी ने प्रेरणा दी, पहले भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से नारद को प्रेरणा दी और फिर नारद जी ने बाहर से आके प्रेरणा दी। इसको बोलते हैं गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा पहले अंदर से प्रेरणा देता है, फिर गुरु के रूप में बाहर से उसकी पुष्टि करता है। तो नारद जी ने जब प्रेरणा दी तो व्यासदेव समाधि में बैठे अपने आश्रम में। व्यासदेव ने क्या देखा, पूर्ण पुरुष भगवान को देखा, उसके साथ उनकी सारी शक्तियों को देखा और माया को देखा जो भगवान के पूर्ण वश में थी, और फिर जीवों को देखा जो माया के वश में था थे। माया भगवान के वश में थी और जीव माया के वश में थे, और इस कारण से जीव अनर्थ कर रहे थे। अनर्थ का मतलब क्या, अर्थ का मतलब अपना सुख, अनर्थ का मतलब अपने लिए दुख का साधन जुटाना। तो जीव माया के बंधन से अपना अनर्थ कर रहे थे, ये देखा व्यासदेव ने। और फिर देखा कि जीवों का अनर्थ समनम कैसे होगा, इनके अर्थ, इनके जो अनर्थ है उसका नाश कैसे किया जाए। तब लिखा, वहां लिखा है कृष्णेन भक्ति योगेन, पहले पूर्ण पुरुष कहा फिर अधोक्षजय कहा, तो लोग कह सकते पूर्ण पुरुष तो कोई और भी हो सकता है, फिर अधोक्षज भी कोई इंद्रियों से परे हो सकता है। तब तीसरे श्लोक में कहा कृष्णेर कृष्णेन, वो कौन है पूर्ण पुरुष, वो अध्यक्ष खज कौन है, श्री कृष्ण। और उसकी भक्ति योगेन, उसकी भक्ति के द्वारा अनत समनम सुश्रूष, केवल सुनने से, भागवत केवल सुनने से, किससे सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है, किससे सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सुन सकता है भागवत सुनने के लिए, क्या आवश्यकता है पहले, क्या जरूरत, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या गुण चाहिए भागवत सुनने के लिए। प्रभुपाद ने बड़ा एक चीज लिखी है, वो तो हम कभी उसमें फिट बैठे मुश्किल है। जिसका मन पवित्र होगा वो भागवत सुन सकता है। फिर लिखते हैं मन उसका पवित्र हो सकता है जिसका आचरण पवित्र है, मतलब आचरण उसका पवित्र हो सकता है जो खान पान पवित्र है, जिसका जिसका जीवन उठना बैठना पवित्र है, और जिसका उसका सारा चीजें पवित्र है, वही केवल भागवत सुन सकता है। तब तो बहुत मुश्किल लगा। फिर प्रभुपाद ने कहा कैसे भी अगर कोई भागवत पुरुष भागवत सुनाए कृपा करके तो उसका उद्धार हो जाएगा। सम हाउ प्रभुपाद ने लिखी, ये सब लिख के फिर लिखा सम हाउ। अगर किसी भागवत पुरुष से, वो सम हाउ कौन है, वो सम हाउ प्रभुपाद है। अगर प्रभुपाद जैसे भागवत पुरुष से कोई पाश्चात्य देश का बिल्कुल जानता भी नहीं हो कृष्ण भक्ति को, और संसार के सारे पापों में लिप्त भी हो, उनके मुख से भागवत सुने तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। ये समभाव का मतलब कैसे प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए, भागवत की शक्ति है ये। भागवत क्या कर सकती है, भागवत पापमय जीवों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाती है, आध्यात्मिक क्रांति लाती है। अघ जनता अघ विपलवो, जनता जो पाप कर्मों में लिप्त है उसके जीवन में क्रांति भागवत ला सकती है। ये भागवत केवल सुनने से जीवन में क्रांति आएगी आध्यात्मिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है जो प्रचारक है उनको प्रेरणा देने के लिए कि विश्व भर में जो आतंकवाद चल रहा है उसका दायित्व तो भारत के ऊपर है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारत तो बहुत शांत यहां की प्रजा है, आतंकवादी तो कोई भी नहीं है, यहां पत्थर भी किसी को नहीं मारते। तो प्रभुपाद ने कहा हां भारतवासी ही इसके दायित्व तो भारतवासियों के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इस भागवत का प्रचार नहीं किया दुनिया में। इस भागवत का प्रचार किया होता तो संसार में शांति होती, संसार में ये हालत नहीं होती जो आज की है। तो इसका इसलिए चेतना महाप्रभु की ये भविष्य ये डायरेक्ट आर्डर है, भारत भूमि तिहाइला मनुष्य जन्म जार, मनुष्य जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ये डायरेक्ट आर्डर है। अगर आपका जन्म भारत भूमि पे हुआ है तो आप निश्चित रूप से भक्ति के द्वारा अपने जन्म को सार्थक करो और फिर जाके पूरे विश्व का उपकार करो। जिनको नहीं जानते हो, पर का मतलब जिसको जानते नहीं है, पराया है, अपने का तो सब उपकार करते हैं, पराये का उपकार करको, जिसको नहीं जानते हैं उसको हाथ से उठा के उठा लो गिरे हुए को, पर उपकार करो। पर मतलब पराया, उप मतलब उठाओ, कर मतलब हाथ देकर दूसरे को उठाओ, जो गिरे हुए हैं माया में, जो बंधे हुए हैं उसका बंधन खोलो। तो ये आपके ऊपर दायित्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट दिया है, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये बहुत बड़ा जवाबदारी हम सब की, ऐसे नहीं लिखा है कौन करेगा, जो भी हो, कीवा विप्रे कीवा न्यासी कीवा सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो, जो कृष्ण तत्व को जानता है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये डायरेक्ट आर्डर महाप्रभु का आप लोगों के लिए है। आपको ये सबसे उत्तम प्रोफेशन है, भागवत को पढ़िए, गीता को पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, भक्तों के संग में बैठकर और फिर प्रचार कीजिए। ये एक ही कार्य है जो हमारा अपना और लाखों और का उद्धार कर सकता है। ये महत्वपूर्ण कार्य प्रभुपाद जी हमारे लिए रख के गए हैं महाप्रभु ने सारे देश के एक एक नगर और ग्राम में प्रचार करने के लिए कहा है। अभी तक बहुत से छोटे छोटे गांव और नगर कोई पहुंचा नहीं है। ये सब काम कोई भाग्यशाली भक्तों को करना है जिसके ऊपर भगवान की कृपा और अनुग्रह होगा, निकल के करना चाहिए, यही काम करना चाहिए। बाकी सारा काम किसके लिए है? सांसारिक पथे, बाकी जो भी काम कर रहे हैं सांसारिक पथे का है। केवल जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह होगा वो अपने आप को पहचानेगा और सुख का अनुभव करेगा तो दूसरों को वही सुख देगा। आत्मोपमेये न सर्वत्र, जो अपने से कंपेयर करता है, अपने से पहले तुलना करता है कि देखो मुझे कृष्ण भावना में आने से कितना सुख मिला, कितना मैं परेशान रहता था, अब कितना आनंद में मैं हूं, तो ये आनंद दूसरों को देना चाहिए मुझे। तो स्वयं पहले आनंद का अनुभव करो और फिर दूसरों को ये आनंद दो, और ये आनंद देने के ऊपर इसके लिए भी करुणा चाहिए। ये करुणा ही एक हृदय में उदय होगी तब दूसरे का आप उद्धार कर सकते हो। करुणा से दूसरे का हृदय में परिवर्तन आएगा। जो दूसरे को दुखी देखे, जिसका हृदय द्रवित हो और उसमें करुणा का उदय हो, दया का उदय हो, तब दूसरे का उद्धार होगा। दिखाने के लिए प्रवचन करने से किसी का उद्धार नहीं होगा, करुणा होगी। भगवान जब देखता है कि ये भक्त करुणा कर रहा है तो भगवान की करुणा बरसती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मायावादी क्या कहते हैं कि ज्ञान से, किंतु यहां पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। ज्ञान से नहीं, क्यों ज्ञान से नहीं होता है, क्यों भगवान की कृपा से होता है? ज्ञान सतोगुण में होता है, सतो संजायते ज्ञानम, ज्ञान होता ही सतोगुण में, और सतोगुण से भगवान तो तीनों गुणों से परे है, तो फिर भगवान को सतोगुण वाला कैसे पा सकता है? संभव नहीं। हरे कृष्णा, अरे कृष्णा, सतोगुण में आदमी को इतना सुख मिलता है कि सो जाता है। सतोगुण में सुख होता है ना, सुख में आदमी को नींद आती है, दुख में कहां से आएगी। तो सतोगुण का एक ही अच्छा भाव है कि आदमी आराम से सो सकता है। कोई बात नहीं, परिश्रम करने से नींद भी आती है। भगवत कथा में सोने से कोई ना कोई जगा लेगा, लेकिन घर में सोगे तो कोई नहीं जगाएगा। वैसे ही भी हमारा काम जगाने का, ये जीव जागो जीव जागो। तो क्या कथा कर रहे थे, सतोगुण में ज्ञान होता है और भगवान तीनों गुणों से अतीत है, तो सतोगुण में, तो ज्ञान से कैसे भगवान को पाया जा सकता है। निस्त्रगुणो भव अर्जुन, दो बार भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया है, मुझे जानना है, मुझे पाना है, तो तीनों गुणों से ऊपर आओ, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निस्त्रगुणो भव अर्जुन, निर्गुण स्तर पे आओ। निर्गुण का मतलब तीनों गुणों से ऊपर आ जाओ। उसका साधन क्या है, अर्जुन ने पूछा जाकर, कैसे तीनों गुणों से ऊपर आए? तो अर्जुन, भगवान ने क्या उत्तर दिया? अविविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतयते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविविचारेण भक्ति योगेन, वो भक्ति जो केवल एक अनन्य भक्ति, केवल्य भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं, केवल्य भक्ति, अनन्य भक्ति, जिसमें एक के अलावा और किसी के तरफ प्रेम नहीं जाए, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति से आदमी तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। तो तीनों गुणों से मुक्त होने का साधन क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति, अविविचारी भक्ति। तो क्यों नहीं हो सकते हैं ज्ञान से मुक्त? क्योंकि ज्ञान सतोगुण के अंतर्गत होता है। कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते वो कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुनाम जन्मनाम, कई लाखों जन्मों तक ज्ञान का अभ्यास करने से किसी भक्त का संग हो जाए, किसी भक्त की कृपा हो जाए, तो फिर उसको भगवान के श्री कृष्ण वासुदेव के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए और उसकी भक्ति में लग जाए, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। भगवद गीता में ज्ञानी के लिए एक ही श्लोक में अगर कहीं उत्तर देना है तो उसका ये श्लोक है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। असल में ज्ञानी वो है जो कई जन्मों के ज्ञान के अभ्यास से भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है ये जान ले, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। इसका मतलब ऐसे ज्ञानी दुर्लभ है, हरे कृष्ण, ज्ञानी दुर्लभ है। तो ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होता, भगवान किससे प्राप्त होता है? भक्ति से। और भक्ति कहां से मिलेगी? अब ये दूसरा प्रश्न उठता है, अगर भगवान भक्ति से मिलते हैं तो भक्ति कहां से मिलेगी? हाँ जी, भक्ति जन्म होते भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही भक्त के संग में होगा। भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता, भक्ति केवल भक्त से मिलेगी, भगवान नहीं देते किसी को भक्ति। भक्ति का जो एजेंसी है भगवान ने अपने भक्तों को दी है, वही किसी को भक्ति देना चाहे तो दे सकते हैं, स्वयं भगवान किसी को भक्ति नहीं देते। अगर किसी को भक्ति दे किसी को नहीं दे तो भगवान के ऊपर पक्षपात आ जाएगा, इसलिए भगवान ने भक्ति अपने हाथ में नहीं रखी है, भक्ति अपने भक्तों को दी है। भक्ति भक्त दे सकता है, भगवान भक्ति स्वयं बहुत रेयर किसी को देते हैं। जब भगवान अर्जुन जैसा कोई भक्त होता है तो भगवान अपने आप, एक जगह विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सर्वधर्म मम मन मना भाव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कारो, और उसके बाद सर्वधर्मान परिचय 18वें अध्याय में जब श्री कृष्ण ये दो श्लोक बोले तो कहते हैं कि अर्जुन मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं, मैंने भक्ति अपने आप किसी को देना नहीं है, ये मेरा वचन है, मेरे भक्ति केवल भक्ति दे सकते हैं, लेकिन आज अनुग्रह के कारण मैं शुद्ध भक्ति के ये श्लोक आपको सिखा रहा हूं, मैं अपना वचन तोड़ के आपको ये भक्ति का साधन बता रहा हूं जो कि मैं किसी को बताता नहीं हूं, मेरे भक्त बताते। तो बहुत रेयरली भगवान किसी ऐसे विशेष भक्त के ऊपर अनुग्रह करें तो भक्ति देते हैं, नहीं तो भक्ति केवल मिलती है भगवान के भक्तों से। इसलिए हमेशा भक्तों के संग को महत्व देना चाहिए, और भागवत में रुचि भी सुनने में तब होगी जब किसी महात्मा की, भक्त की, वैष्णव की कृपा होगी। महात्मा महत सेवया, महात्मा की सेवा से, भक्त की सेवा से, भक्त की कृपा से भागवत सुनने में रुचि होगी, नहीं तो भागवत सुनने में रुचि नहीं होगी। वो तो फिर आठ की तरफ, नौ की तरफ देखेंगे कि नौ पे कांटा आया, पांच सात की बाल्टी आई नहीं और अभी तक कथा चल रही है। ये तब तक चलेगा जब तक भक्त की रुचि, जब भगवान किसी भक्त की कृपा हुई, भगवत में रस आने लगा, सुखदेव कथा सुना रहा है और पांचवा दिन हुआ है और प्रश्न पूछा तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को, अब पांच दिन हो गए, थोड़ा जलपान तो कर लो फिर कथा सुनना। बोला महाराज अब हो गया जलपान, इस जल के कारण तो मैंने ऋषि को अपमान किया, उसका अपमान किया, अब ये जल गोलोक में जाकर पिएंगे, इस संसार का जल नहीं पीना है। आप जो ये कथा का अमृत सुना रहे हैं बस आप कथा बंद मत कीजिए, प्यास लग जाएगी। असल में होना ये चाहिए किचन बंद होना चाहिए, कथा बंद मत करो नहीं तो भूख लगेगी। कथा चलती रहनी चाहिए तो भूख नहीं लगेगी, कथा बंद हो गई तो भूख लगेगी। भागवत में रुचि का प्रमाण यह है कि कथा चलती है तो भूख प्यास नहीं लगती, और वैसे तो ऋषियों ने कहा था मृत्यु भी नहीं आएगी, अगर मरना नहीं चाहते हो तो कथा सुनते रहो। तब तो सब कहते नहीं हम मरना चाहते, अब कथा बंद करो। तो कथा में रुचि भी तब होगी, उसका भी जो परंपरा है ये है, देखो हरे कृष्ण। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहां स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया है। भाई हमको माया ने क्यों बांध के रखा है, कोई पूछे तो, हम भगवान को क्यों भूल गए हैं, हमारी विस्मृति का कारण क्या है। तो उसका अर्थ ये लिखा है, ये भी भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक बोला है, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे द्वारा आप जानना चाहो तो जानने की शक्ति, और मुझे भूलना चाहो तो भूलने की शक्ति भी मैं देता हूं। तो भूलने की शक्ति भगवान से आती है। ये भगवान को पता कैसे लगता है कि हम उसको भूलना चाहते हैं। अभी भगवान को कैसे पता लगता है कि आप चाहते हैं कि भागवत बंद हो जाए, प्रसाद चालू हो जाए, कैसे भगवान को पता लगता है। भगवान तो आप ही हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। आत्मा जैसे जैसे आत्मा में कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको भगवान ऐसे पता लगता है जैसे फूल, यहां कोई आदमी सेंट लगा के यहां से गुजर जाए, हम उसको हाथ भी नहीं लगाएं, सूंघे भी नहीं, तो भी हमारे नाक में आएगी खुशबू के नहीं आएगी, आएगी ना। ऐसे भगवान बस जीवात्मा के पास बैठे, उसके हृदय में इच्छा होती है प्रसाद खाना है, तो भगवान कहते हैं अब तुम बाल्टी को याद करो, पत्तल को याद करो, तो भगवान याद। और जब जब होता है कि नहीं आज प्रसाद नहीं खाना है, एकादशी है, तो भगवान कहते हैं पानी भी नहीं पीना है, आज निर्जल एकादशी है, तो ये भी भुला देते हैं कि आज प्रसाद भूल जाओ, एकादशी है कब, कल है परसों, कल है, तो आज से तैयारी करो, मन में ऐसा विचार पैदा करो कि कल हमको नहीं खाना है, तो भगवान अंदर से आपको अन्न को भुला देगा। ये भगवान करता है, अंदर से भुलाने का काम भी वो करता है और याद भी वो दिलाता है, लेकिन अपनी मर्जी से बोलो नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे हम इच्छा करते हैं वैसे वो हमारी सहायता करते हैं। और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से ही होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने के इच्छा से कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य उसे ढंग से या बेढंगे से इस्तेमाल कर सकता है, ये अचल नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। ये जो अभी बात कही ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसका अर्थ ये कि हमें क्यों भूलता है, हम माया के पर्दा हमारे ऊपर क्यों है, हम अज्ञान में क्यों आ गए हैं, उसका एक ही कारण यहां लिखा है। और वो कारण क्या लिखा है, हमारे को स्वतंत्रता है थोड़ी, उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें ये हमारे हाथ में है। जब हम इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो माया हमको पकड़ लेती है। ये आप भारत में सब स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है, अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है ना, और कानून से रहेंगे तो अपने घर में आराम से खाओ पियो, नहीं तो जेल में खाना पड़ेगा जेल की रोटी, दोनों में अंतर इतना है। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और माया और भगवान से अलग भोगने का प्रयास करते हैं, भगवान से अलग भोगने का प्रयास करते हैं, तो भगवान की माया वो पुलिस की तरह है, हमको पकड़ लेती है, क्योंकि हम जो हमारी चीज नहीं है उसको 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 जबरदस्ती चुराने का प्रयास करते हैं, तो माया पकड़ लेती है। तो हमारे माया में बंधने का कारण, अज्ञानता का कारण क्या है, एक ही, स्वतंत्रता का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हमको स्वतंत्रता है, अभी आप कथा में बैठो ये भी आपकी इच्छा है, और आप जाके बाहर मानो के कहीं बैठ के वो चाय की प्याली पियो तो भी आपकी बस में है। स्वतंत्रता आपको है कि यहां आओ के वहां जाओ, मंदिर में आओ के बाहर कहीं जाओ घूमने, ये आपके बस में है, तो ये स्वतंत्रता का सदुपयोग जीव को करना चाहिए, तो नहीं करने के कारण बंधन है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं कि इसके प्रभाव को पार पाना दुष्कर है। देवी ये ऐश गुणमयी मम माया दुर्तया, इस माया से हम छूट नहीं सकते हैं। क्या रास्ता है? किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती ते, लिखा है। इस माया के बंधन में हम क्यों पड़े? इसलिए कि हमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा की, इसलिए माया ने हमको पकड़ लिया। अब माया से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान में शरण में कैसे जाएंगे? हरे कृष्णा में हम कहते हैं भगवान हमको सेवा में लगाओ, और जब कहते हैं कि प्रसाद की बाल्टी उठा के सेवा करो, बोला नहीं मुझे भूख लगी है मैं खाऊंगा। तो सेवा करो ना, ये सेवा ही तो मांगते हो रोज, सेवा में लगना चाहिए। हरे कृष्णा, ये प्रसाद खाने के बाद सब ऐसे उठ के चले जाते हैं, सफाई कोई करता है प्रसाद हाल की? हाँ, नहीं करता है। अरे वैष्णव की जूठन उठाने वाले को भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन वो कृपा बेचारे सेवादारी करते उठाते हैं, हम तो खा के चल बजाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अनुग्रह जो मिलेगा ये सेवा से मिलेगा, और वो करने का अभी भोग की भावना है, भक्ति में सेवा की भावना नहीं है। सर्विट्यूड का एटीट्यूड नहीं है, एंजॉयिंग एटीट्यूड है। अभी भी भक्ति में आने के बाद भी प्रायः अधिकांश भक्तों का एंजॉयिंग स्पिरिट है, सर्विस एटीट्यूड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भक्ति में बाधा अभी भी है, सब कुछ करते हुए भी यहां अटके हुए हैं। अच्छा लगता है, वाह वाह बहुत अच्छा कीर्तन है। अरे कीर्तन है, लेकिन ये मृदंग उठा के तो अंदर रखो, ये तो इधर ही रहने दो, वो कौन उठाएगा? मृदंग बजा तब कीर्तन हुआ ना, तो मृदंग को भी तो संभाले रखना चाहिए ना। मृदंग का कहीं आसन होना चाहिए, मृदंग को कहीं बड़े आदर से रखना चाहिए। वो तो जहां है वहां पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, लोग मुझे देख रहे थे, लोग देखे नहीं, भगवान देखे तब काम चलेगा, लोग देखेंगे तो काम बिगड़ेगा। हरे कृष्ण। समाप्ति की ओर, जो कोई भी भगवान की शरण में जाता है वो प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस पाश से छूटना चाहता है तो वो भगवान की कृपा से ही संभव है। यहां पर माया के अधीन बद्ध जीवों के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है। कितना जीव, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितनी सुविधाएं बना के रखी है भौतिकता के लिए, ये तो हम देख सकते हैं। इस दुनिया में कितने बड़े बड़े कर्म दुनिया में, जहाज बनाया, आसमान में उड़ सकते हैं, कैसे कितना प्रगति की है इन सब चीजों में। लेकिन ये प्रगति, प्रभुपाद जी कहते हैं ये, किंतु वास्तव में इसको अपना पद जाना न चाहिए, किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वो परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो जान जाता है कि भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनके शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, ये अज्ञान या अविद्या कहलाती है। तो जो कुछ दुनिया कर रही है, चाहे वो जहाज बना रही है, चाहे वो गवर्नमेंट चला रही है, चाहे वो भौतिकता के कई विज्ञान के आविष्कार कर रही है, वो सब माया के अधीन है, अविद्या के कारण है। किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं। जब वो असली ज्ञान से जानेंगे कि जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, तब उसका बंधन से मुक्ति हो सकती है। ये कौन प्रार्थना कर रहा था? जीव जब मां के गर्भ में था, और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो इस प्रार्थना को सुनने में भी हमको लगता है ये मैंने की थी प्रार्थना, नहीं नहीं किसी और ने की। तब हो गया जीव कहता है, हम जीव थोड़ी है, ये हमारी प्रार्थना थी। और ये प्रार्थना भगवान के अनुग्रह से हमको याद रखनी चाहिए और भगवान की भक्ति करके कार्तिक महीने में वृंदावन में आए हो, आप तो मुक्त ही हो, अब दूसरों को भगवान की भक्ति देने का काम करो, तभी आपके ऊपर दायित्व है। भगवान ने आपको वृंदावन में कार्तिक में आने के लिए एक अवसर दिया है, आप यहां वृंदावन में बहुत पवित्र स्थान रमण रीति में रह रहे हो, भगवान का यहां दर्शन कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, दामोदर अष्टक सुन रहे हो, गोपी गीत सुन रहे हो, अब आपस जाके अगली बार 10-10 और नए आदमियों को भगवान की भक्ति दो, तब आपका यहां आना सार्थक है। नहीं तो अपने आप को मुक्त करना तो ठीक है, लेकिन दूसरों को प्रचार करो, तब आपका अब आपके ऊपर दायित्व है, आपके ऊपर भगवान ने कृपा की है, आप वृंदावन में आए हो, तो ये दूसरों को अब कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।